फिर एक बड़ा मारूफ जुमला के जी रिश्वत के बगैर गुजारा नहीं, आइए जरा इसको भी पढ़ते हैं। कुरान मजीद में एक वाक्य असहाबे सब्त का है, इससे पता चलता है कि हम असहाबे सब्त बने हुए हैं। मैंने नहीं नीचे देखा था कि ये वाक्य आ रहा है, मैंने तो आपको पीछे से रिलेट करके सुना है हीलों में, लेकिन यहां देखिए ये भी तो आज के जुमले हैं ना जो इसमें आ रहे हैं। क्या एक जजीरा था, वहां लोग मछली पकड़ने का काम किया करते थे। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि देखो हफ्ते का एक दिन यानी यौम सब्त, और आपको पता है जिन्होंने कुरान तफसीर पढ़ी कि सब्त का मानी होता है छुट्टी, टू कट, छुट्टी के दिन सब कट जाता है। जैसे आज छुट्टी का दिन है, कितना सुकून है भाई, आपको नहीं फील हो रहा, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग में आता है, इस हॉल में पढ़ाने में मुझे सब मज़ा आता है, लेकिन ये चीज़ मेरी है कि मेरा बस चले मैं ये पीछे खिड़कियां बंद करवा दूं, क्योंकि वो जो नीचे गाड़ियां जाती है ना वो इनविजिबल सा एक विस्पर हमारी रिकॉर्डिंग में आता है, मुझे खुद पता है, आपको नहीं अंदाज़ा होता दी है, लेकिन आज वो नहीं आ रहा, आज सुकून है। लेकिन यौम सब छुट्टी का दिन, खामोशी का दिन, हड़ताल, ऐसी फीलिंग आती है ना, सब चीज़ें सो रही हैं, ये दिन था उनका। खैर, अल्लाह ने कहा था कि इस दिन तुम मछली नहीं पकड़ोगे, तिजारत कमाई और ये दुनिया के काम नहीं करोगे, सिर्फ तुम अल्लाह की इबादत करोगे, बच्चों में रहोगे, आराम करोगे। अब इंसान की तबीयत में लालच तो है ही, कुछ लोगों ने कहा ठीक है अल्लाह की इताअत की, कुछ लोगों को ये ख्याल आया कि कोई ना कोई धंधा तो करना चाहिए, तो वो करते ये थे कि मछलियाँ पकड़ते तो नहीं थे, हफ्ते के दिन मछली को घेर घार के तालाब में धकेल देते थे और अगले दिन फिर पकड़ लेते थे। इस दौर के उलमाए सू नई ने यह हीला समझाया कि मछली को खुद हाथ ना लगाओ, खुद ना पकड़ो, लेकिन घेर घार के तालाब में धकेल दो। और कुछ लोग खुल्लम खुल्ला भी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते और मछलियां पकड़ते। अब जब अल्लाह ताला ने यह देखा कि मेरा दिया हुआ रिज़्क़ हलाल यानी इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा के दिन का रिज़्क़ हलाल काफी नहीं समझ रहे और इसमें हराम शामिल करने पर तुले हुए, नोट कीजिएगा 6 दिन तक मछलियां पकड़ना हलाल था, तो शैतान ने दिल में क्या डाला, सारी मछलियां आनी हफ्ते को, ठीक है आजमाइश थी तो ये आजमाइश में पूरे उतर जाते तो हफ्ते को मछलियां आनी बंद हो जानी थी, लेकिन आप देखिए वो लोग कहते हैं ना अजान होती है तो गाहक आ जाते हैं, जुमे के नमाज के लिए दुकान बंद करते हैं, गाहकों की लाइनें लगी रहती हैं, चलो फिर बारी बारी पढ़ लेते हैं, पहले तुम पढ़ो फिर मैं पढ़ाता हूँ, हाँ तो ये इम्तिहान होता है। खैर, अल्लाह ताला ने जवाबी कार्रवाई ये फरमाई कि अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया कि वो सनीचर यानी हफ्ते के दिन ही शिकार के लिए आया करें। देखिए मछलियों को अल्लाह हफ्ते को भेजता था, अब वो सनीचर यानी हफ्ता सैटरडे को ही शिकार करते तो मछली इनके हाथ लगती, और इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा वो शिकार करके थक जाते, मछली इनके हाथ ना लगती। ये इनकी नाशुकरी थी कि उन्होंने अल्लाह के 6 दिनों में अता करदा रिज़्क़े हलाल की कदर ना की, इसमें हराम मिलाना लाजमी ख्याल किया और यौम सब्त यानी सनीचर को शिकार से बाज नहीं आए। जवाबी कार्रवाई अल्लाह ने की कि अच्छा तुम हराम से बाज नहीं आते, मेरे दिए हुए हलाल को काफ़ी नहीं समझते, हराम के बड़े शौकीन हो, तो फिर हराम के बगैर अब तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। और सच बात है कि जब फिर बंदा कह देता है ना कि मेरा गुजारा नहीं होना, तो फिर अल्लाह कहता है अब तुम्हारा होना भी कोई नहीं है, तुम आराम से बैठो, तुम हो ही इस काबिल नहीं कि तुम हलाल खाओ। खैर, आज आप किसी से पूछे तुम रिश्वत क्यों लेते हो, कहते जी इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। दूध में मिलावट क्यों करते हो, कहते इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। तुम ये काला धंधा यानी ब्लैक मार्केटिंग क्यों करते हो, डॉक्टर साहब इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, आप करके दिखा दें कैसे होगा। आज भी तो लोग ये कहते हैं ना, इंटरेस्ट के बगैर गुजारा नहीं, इंश्योरेंस के बगैर ये नहीं वो नहीं, है ना। और ये जो कानून बने हुए ना, मुझे पता है बहुत सारे जहनों में ये सवाल आता है, हालांकि आगे सूद का मौजू आ रहा है, लेकिन बात छेड़ी है ना इंटरेस्ट की और ये इंश्योरेंस की, मुझे पता है अमेरिका समेत इधर उधर, और आप अल्लाह माफ करें हमारे मुल्कों में भी किसी हद तक आ रहा है, आप गाड़ी बाहर निकाल ही नहीं सकते जब तक आप उसकी इंश्योरेंस ना कराएं, मुझे पता है, आई नो दिस रूल। मैं आपसे पूछती हूँ कि ये रूल आज तक क्यों नहीं बदला। हम मुसलमान चौथी नस्ल है इस मुल्क में, इधर चौथी या तीसरी है, तीसरी है, अमेरिका कनाडा में पांचवी चौथी होगी, यूके में देख लीजिए छठी होगी, क्या आज तक हम मुसलमान इतना भी नहीं कह सके कि हमें इंटरेस्ट नहीं लेना, देने को तो पीछे डाल दे, देना तुम्हारी मर्जी है, हम ना लें, लेना नहीं है, कोई देता है आपको, आप कहते हमें नहीं लेना, हमारी जिम्मेदारी, हम गाड़ी खराब होगी हमारा हादसा होगा हम 100% करेंगे, क्या आप और मैं आज तक ये रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर पीछे हम पड़ चुके हैं। मजहबी आज़ादी अल्लाह ने हर इंसान को दिए, 5 शरीयत के मकासद याद है, तो उसमें आपके दीन की हिफाजत लाजिम है। अमेरिका मानता है कि रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, अल्लाह कहता है ना आप इन मुल्कों में अगर आज पिछली तीन नस्लों से फाइट कर रहे होते हैं ना कि वी मुस्लिम कैन टेक इंश्योरेंस, वी कैन गिव और टेक द इंटरेस्ट, तो इन्होंने कहना था नहीं तो ना से भी, तुम आप लिख दो बस हमें कि फिर तुम हमसे पैसे नहीं मांगोगे। उनको क्या लगे, जान आपकी गाड़ी आपकी, वो आपसे ज्यादा आपके मेहरबान है। तो हम इन फंदों में अभी तक क्यों फंसे हुए हैं, यूनाइट होकर मुस्लिम्स ने अभी तक ये एफर्ट सच्चे दिल से की कोई नहीं है। बात पीछे वही है कि वो कहते हैं ना कि कारी चल समझता है लेकिन वो हकीकत में है कुरान। जब मैं आप वॉकिंग कुरान बनेंगे, चलते फिरते कुरान पे अमल करने वाले बनेंगे, अपोलोजेटिक नहीं होंगे, हम हर वक्त अपने आप को ही तसल्लियां देते हुए नहीं होंगे, तो याद रखिए कि अल्लाह के हुक्म से ये दुनिया मानेगी। और आप लिख लें ये बात 20 साल 25 साल आगे जाए, ना इस दुनिया से इंटरेस्ट और सूद का खात्मा हुआ तो आप मेरी बात पीछे डाल दें। इतनी तेजी से अब इन मुल्कों को फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि इंटरेस्ट ने इनकी जड़ें गिला दी। आज इकोनॉमी डूबी, अमेरिकन डॉलर कहाँ गया, पाउंड किधर गया, आपका नॉर्वेजियन क्रोन किधर जा रहा है, रात को कुछ दिन को, ये सिर्फ इंटरेस्ट बेड इकोनॉमिक्स है, टेररिज्म है, ये इकोनॉमिकल टेररिज्म है। और दे आर नो, आपको पता है स्वीडन में तो उन्होंने कहते हैं बैंकों से इंटरेस्ट अब खत्म कर दिया, इनको पता है। और ये अल्लाह के साथ मुकाबला है, फाजनु भी हरबे मिन अल्लाह व रसूली। तो लिहाजा हम मुसलमान नहीं कर रहे प्रीच, फिगर एंड फैक्ट्स बताएंगे इनको, और लिख लें अगले सालों में ये को एजुकेशन खत्म करेंगे, लड़कियां अलग रहेंगी लड़के अलग होंगे, और लिख लीजिए कि अगले सालों में इनकी औरतें पूरे कपड़े पहनेंगी, निकाब करेंगी। ये अब हम नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और से करा रहा है, इनकी साइंस बता रही है कि इनको ये करना पड़ेगा। अमेरिकन स्कूलों में अब बच्चों को अलग सेग्रीगेटेड करना शुरू कर दिया गया। मैंने मिसाल कहीं सुनाई थी वाकया कहीं बैठे हुए कि किसी मुल्क में किसी स्कूल में गए, एक दफा गए तो देखा कि बच्चे बच्चियां इकट्ठे हैं, कुछ साल के बाद दोबारा गए तो देखा कि लड़कियों के सेक्शंस अलग है लड़कों के अलग हैं। कहा ये क्या हुआ, कहते हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, हमारा स्कूल नीचे से नीचे ही जा रहा था, फ्लॉप हो रहा था। तो फिर हमने साइकाट्रिस्टों को बुलाया कि क्या वजह है, बच्चों की साइकोलॉजी क्या कहती है, तो उन्होंने कहा ये आग पानी इकट्ठा है, इनका दिमाग ही एक दूसरे में लगा रहता है, अलग करो। कहते हमने अलग किया, ठीक हो गए। अब वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने अलग कोई सूरत नूर पढ़ के नहीं किया या सूरत अज़ाब पढ़ के नहीं किया, अपने फिगर एंड फैक्ट्स के मुताबिक किया, अब उनका रिजल्ट ठीक हो गया। राइट, तो याद रखिए ये अल्लाह के कानून है, इस पर आपको मुझे यकीन होना चाहिए, ये होगा, ये हो के रहेगा। आप मैं अपने बच्चों को जिस सिस्टम में डालें, मैं इस वक्त मजबूर हैं, हालात ऐसे हैं, एक अलग बहस है, लेकिन हम आप उनके ऊपर एक ऐसी चीज मुसल्लत किए हुए हैं कि ये वो बच्चे ही हैं जो बच जाएंगे इससे। आप में से ही कोई सुना रहे थे, एक दो लोगों ने मुझे सुनाया कि आजकल जो एक चल रहा है नॉर्वे में कि नबी सल्लम और हजरत ईसा का तकाबुल है ना, खबर आपके बच्चों को सुना रहे हैं वो कि आपके नबी ने ये तलवारों के साथ दीन फैलाया। मां सुना चुकी है उनको सीरत, वो आपके नबी के बारे में सुनाए आपके बच्चों को कि आप देखे ईसा ने तो मोहब्बत की थी और एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल आगे कर दो और लव जीजिस और फुलां जीजिस, और देखो मुसलमानों तुम्हारे नबी ने तलवारों से दीन फैलाया। और वो एक लड़की जिसको पूरी दुनिया ने आज उछाल दिया, उसकी किताबें आपके मुल्क में पढ़ा रहे हैं, आपकी मुसलमान बच्ची है क्योंकि उसने इस्लाम के खिलाफ बातें लिखी है बोली हैं। वो कहते हैं देखो ये तो इनकी अपनी बच्चियां, कहती है सिलेबस में मुझे आप ही की बच्चियों में से किसी ने दिखाई कि देखें ये बुक मुझे पढ़ा रहे हैं, मैंने खुद चूज की है ये बुक, कि देखो ये कहते क्या। तो वो आपकी मुसलमान बच्ची इसके मुंह से वो बातें सुना रहे हैं कि देखो इनके तो बच्चे खुद कह रहे हैं कि औरतों पर बड़ा जुल्म है और हमें बोटी नहीं मिलती थी और लड़कों को बोटी मिल जाती थी। ये पता नहीं आज कौन सा पाकिस्तान है कि ना औरतों को रोटी कम मिलती है तो मर्दों को ज्यादा मिलती है। है कोई आपके घरों में ऐसा घर अल्लाह की बना? तो वो किताबें छिपवा के मेरा ले 1000 करोन की तो बुक होगी जो उसका स्टेटस था। तो पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, जहर को उगला जा रहा है तो वो करेंगे, उनके पास सोर्स है, उनको समझ है। वो आपको सीधे तरीके से तो नहीं कह सकते कि आप दीन छोड़ो, दीन से नफरत तो सिखा ही सकते हैं। तो लिहाजा याद रखिए कि जब कोई ये कहता है ना कि आज के दौर में हलाल पे गुजारा नहीं हो सकता, वो अल्लाह की रज़ाकियत को चैलेंज करता है, वो अल्लाह के तैयब होने को और अल्लाह के पाकीज़ा होने को चैलेंज करता है कि अल्लाह आपको सॉरी गलती लगी है, अल्लाह जी आपने जो कह दिया वो आज नहीं होगा, वो किसी और की, शायद आपने जन्नत की दुनिया की बात की थी, इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा। अल्लाह अकबर, आप करके दिखाएं कैसे होगा। लोग ये भी कहते हैं, चले जी आप करके तो दिखाएं। तभी तो मैंने मिसाल दे दी, अल्लाह का शुक्र है ये मिसाल मौजूद है, तभी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा एतमाद होता है, वरना मैं भी कहती होना ही कोई नहीं, कर ही नहीं कोई सकता। लोग तो कहते हैं बच्चों की शादियां तो कोई सीधी कर ही नहीं सकता, फिर मैं कहती हूँ अच्छा वाकई नहीं कर सकते होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे पास ये तजर्बा भी नहीं है। जब दूसरों को मजबूर बने देखे तो बंदा सोच में पड़ ही जाता है कभी कि ये हो गई। खैर, इस वक्त याद आते हैं असहाबे सब्त, हाय हाय तुम तो असहाबु सब्त बन गए हो, क्या अब तुम्हारा इस वक्त तक पेट का दोजख नहीं भरेगा, तुम्हारा गुजारा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि तुम खुद सनीचर के दिन शिकार करके हराम न कमाओ। शिकार सनीचर यानी हफ्ते में ही रह गया है। वो शख्स जो रिश्वत नहीं लेता, अल्लाह इसके लिए हलाल रिस्क को काफी रिस्क बना देता है, और हलाल रिस्क में इस कदर कुशाइश वुस्सत और बरकत देता है कि इसको हराम की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान की जिंदगी का बदनसीब और बदतरीन लम्हा वो होता है जिस दिन पहली मर्तबा, इस पहली मर्तबा को हाईलाइट करें, ये पहला कदम जब आपका बाहर निकलता है ना, फिर आप उस इस्लाम की बिल्डिंग से बाहर ही चले जाते हैं। पहली दफा गिल्ट होता है, उसके बाद नहीं। पहली मर्तबा वो हराम की कमाई अपनी जेब में डाल लेता है, ये करने के बाद अल्लाह का जिम्मा, इसकी तरफ से दी हुई बरकत, अल्लाह की तरफ से वो सारी कुशाइश खत्म हो जाती है। अब वो साबु सब्त के जुमरे में आ जाते हैं कि अब हराम के बगैर गुजारा नहीं, अब रिश्वत लिए बगैर गुजारा नहीं। दुनिया में अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, और अल्लाह ने इन्हें हमेशा बाइज्जत जिंदगी अता फरमाई, कभी दिक्कत कभी तंगी पेश नहीं आई, वो अल्लाह के जिम्मे में और अल्लाह की हिफाजत में रहे। लेकिन जब अल्लाह का ये जिम्मा तोड़ देते हैं तो अल्लाह की हिफाजत से बाहर आ जाते हैं। अल्लाह के दिए हुए वादे को झुटला के हम खुद हाथ पांव मार के हलाल को अपने हराम में शामिल कर देते हैं, तो फिर हराम के बगैर गुजारा नहीं रहता। तो लिखिएगा जरा, हराम के बगैर गुजारा उसका नहीं होता जो पहला कदम हराम की तरफ उठा लेता है। और हराम खोरी क्या है? एहतकार, मिनोपली। मिनोपली समझते क्या होता है? सब कुछ हमारे हाथ में। मिनोपली क्या है? आप कहते हैं जी इस मुल्क में गाड़ियों की मिनोपली हमारी है, यानी हम गाड़ी लाएं खरीदें बेचें, हमारे पास पूरा इख्तियार है। तो मिनोपली है कि किसी एक को सारा इख्तियार दे देना कि जो आप चाहें करते रहें। इख्तकार यानी मिनोपली की शक्लें, झूठी कस्मों से कारोबार करना, ये आप 1 2 3 कर लें कि हरामखोरी की क्या क्या किस्में हैं। रिश्वत, सूद, मिलावट, नाप तोल में कमी, कर्ज लेकर खा जाना, इन सब चीज़ों को हराम करार दिया गया है। इसमें दो चीज़ों के बारे में ज़रा सी वजाहत, एक रिश्वत के बारे में और दूसरी सूद के बारे में। कुरान मजीद में जो रिश्वत के बारे में आयत आई है वो फौरन रोज़ों और रमज़ान के जिक्र के बाद आई है। महीने के रोज़े और इनके मसाइल बयान किए गए, एतकाफ के मसाइल बयान किए गए। याद आ रहा है कहाँ है कुरान में ये बात? सूरत बकरा आयत 183 से जो आगे की आयतें ना, उन सब के अंदर ये लिखा हुआ है। यानी रोजों के तस्करे के फौरन बाद कुरान में रिश्वत की आयत है, माले ना हक खाने की बात है। आयत के अल्फाज पर गौर करें तो इंसान हैरत ज्यादा हो जाता है कि अल्लाह ताला इंसान की नफसियात को किस कदर समझता है। हम समझते हैं कि रिश्वत लेना जुर्म है और रिश्वत देना इतना बड़ा जुर्म नहीं। पूरे कुरान मजीद में मुझे कोई आयत ऐसी नजर नहीं आती जिसमें अल्लाह ताला ने बराह रास्त रिश्वत लेने से मना फरमाया हो। हराम खाने से तो मना फरमाया, लेकिन इसमें एक तन्हा आयत है जिसमें रिश्वत लेने की बजाय रिश्वत देने से मना फरमाया गया। और मैंने गौर किया तो पता चला कि असल बदमाश और असल मुजरिम तो रिश्वत देने वाला होता है, जो पूरी हुकूमत की मशीनरी को मुजरिम बना देता है और इन्हें बदउनवान यानी करप्ट कर देता है। आपने कभी गौर किया है कि एक मंशियात फरोश कौन? ड्रग ट्रैफिकर, यानी जो ड्रगिंग का काम करते हैं, जो लोगों में नशे वाली चीजें बेचते हैं। जब नशा बेचने वाला शख्स जब कस्टम को रिश्वत देता है तो कितनी रिश्वत देकर चला जाता है? इससे 100 गुना ज्यादा तो हराम वो खुद कमाता है, और ये हराम आखिरकार वो पूरी कौम के लोगों के अंदर डाल देता है। फरमाया वला ताकुल अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक मिन अमवालिन नास बिल इस्मी वअंतुम तालमून। तुम अपने माल बातिल तरीके से ना खाओ, اور اپنے اموال و حکام تک پہنچانے کی کوشش نہ کرو تاکہ تم میں سے ایک فریق دوسرے لوگوں کی جائیداد کو جانتے بوجھتے ہڑپ کر لے، کسی حاکم یا کسی بڑے افسر کو رشوت دی اور کسی کا حق تلف کر دیا، حاکم کے منہ میں ذرا سی ہڈی ڈال کے ملک کا سرمایہ لے لیا۔ ان سب کاموں سے روکا گیا، اور جس بات کا پابند کیا گیا وہ یہ ہے کہ تم بے شک اپنے نقصان کر لو لیکن رشوت مت دو۔ میں دس بدس علماء کرام کے اس فتوے سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیا جس میں علماء کرام نے مجبوری کے عالم میں رشوت دینے کو جائز قرار دیا کہ اپنا حق لینے کے لیے اگر مجبوراً رشوت دینی بھی پڑے تو دے دینا جائز ہے۔ فتویٰ ہے اس پر، لیکن یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کو صاحب الصف بنا دیا، اب کوئی جائز کام بھی بغیر رشوت کے لوگ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ یہ بک جن کی لکھی ہوئی آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ٹی وی پہ آتے تھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، میرا حال 10 سال سے تو زائد ہی ہو گیا ان کو فوت ہوئے، اور ان کو بھی کسی نے گولی ماری تھی۔ میں یہ جملے پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، ان کے یہ لفظ لکھے ہوئے، کسی نے ان کی اس بات پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے ہاں انشاءاللہ ان جملوں کا مول تو ہے۔ اللہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ذرا سختی فتویٰ نہیں دے کے آگے، ڈاکٹر صاحب ذرا ڈھیلی باتیں کرتے، یہ آپ کو میں ذرا سختی دلواؤں ادھر، اللہ یہ تو نہیں کہے گا، مانتے؟ یعنی چلیے گنجائش تھی بھی، لیکن یہ فتویٰ ان کو تو اللہ کیا مجرم نہیں بنا رہا نا، جرم ہونے کا خطرہ ان کا ہے کہ جو کوئی نہ کوئی پلی نکال لیتے ہیں۔ سود کی بھی چند باتیں پڑھ لیتے ہیں۔ سود کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جس تجارت میں آپ نفع میں تو شریک ہوں، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، صرف نفع کی شراکت، مگر نقصان میں شریک نہ ہوں، وہ سود ہے۔ وہ تجارت جس میں آپ نفع و نقصان دونوں میں شریک ہوں، وہ تجارت ہے، نفع ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے مال کو خود تجارت پر لگاؤ، سرمایہ کاری یعنی انویسٹ کرو، یعنی یہ کہ تم تو اپنے مال کو قرضے پر دے دو اور سرمایہ کاری کوئی اور کرے، یہ غلط بات ہے۔ اگر قرضے پر دینا ہے تو قرضے حسنہ دے دو۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ تمہارے بھائی کو کاروبار کے لیے ضرورت ہے، تم اس کو پیسہ دے دو، زیادہ سے زیادہ تم اس کے ساتھ مرابحت کر سکتے ہو، شراکت کر سکتے ہو۔ یعنی کیا ہوتی ہے مرابحت اور شراکت؟ کہ اس کو نفع ہو گیا تو تم کو بھی نفع ہوگا، اس کو نقصان ہوا تو تم کو بھی نقصان ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ تم اپنا مال نقد کرائے پر دے دو۔ 10 لاکھ روپے کسی کو دے دیا کہ تمہیں نفع ہو یا نقصان، مجھے 15% سالانہ کے حساب سے سود کے ساتھ واپس کر دینا، یہ حرام ہے۔ بات سمجھیں، آپ کسی کو 10,000 کرون دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کے عوض ہر مہینے مجھے 500 کرون دیتے رہو، لیکن جب میں چاہوں میں اپنے 10,000 واپس لے لوں، یہ سود ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ 10,000 دے دیے، آپ اس کو کسی کام میں لگا لیں، ٹھیک ہے مجھے مہینے کے 500 ہی دیتے رہے، میری خرچہ اتنا ہی ہے، دے دے، لیکن اینڈ پہ جب میں آپ سے حساب مانگوں نا، تو پھر آپ نے اس 10,000 کو جو کاروبار میں لگایا تھا نا، مثلا 1 سال تک یہ ڈیل رہی، اس 1 سال میں اس 10,000 کے عوض آپ کو کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوا، اس کو پلس مائنس کریں، ممکن ہے کہ 10,000 کل 15,000 واپس ملے، پاسبل ہے، ساتھ اس میں سے جو 500 آپ نے ہر مہینے لیے تھے وہ کاٹ کے اینڈ پہ آپ کو وہ پروفٹ نیٹ پروفٹ دے دیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 10,000 سے پیچھے 8,000 رہ چکا ہو، وہ کہیں گے فلاں مہینے اتنا نفع ہوا بٹ اگلے مہینے اتنا نقصان ہوا، پورے سال کی جب ہم نے ایوریج نکالی تو اس میں آپ کے جو 10 تھے نا وہ اب 7 رہ گئے، اور اس میں سے آپ کو 4 جو ہیں وہ ہم دے چکے، ہر مہینے کے حساب سے پیچھے یہ رہ گئے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے نہیں میرے محفوظ رہیں اور اوپر میرا خرچہ بھی چلتا رہے، یہ سود ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو 10 لاکھ روپے نقد قرض دینے کی بجائے اس 10 لاکھ کا ایک مکان کرائے پر دے دیں، اس کا کرایہ 15% سالانہ لے لیں، یہ حلال ہے، اس لیے کہ آپ نے پہلے 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی، مکان خریدا، پھر آپ نے اسے کرائے پر دیا، اب یہ حلال ہو گیا کیونکہ اب اس میں آپ کی کچھ بھاگ دوڑ، خریداری اور ایک خاص حد تک سرمایہ کاری شامل ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری اصل ضرورت سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ ہے۔ سرمایہ کاری کیے بغیر آپ اپنی رقم سے جو بھی منافع حاصل کریں گے وہ حرام ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کا قول آپ نے سنا ہوگا نا، کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی شخص کو قرض دیا ہوا تھا، تو کسی دن سفر کے دوران اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو سستانے کو دل، جا کے ذرا ریسٹ کرو، تو اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھنے لگے، پھر یاد آیا کہ اس کو تو میں نے قرض دیا ہوا ہے، तो कहने लगे कि मुझे डर लगता है कि मैं एक कर्ज ख्वाह जिसको मैंने कर्ज दिया हुआ है उसकी दीवार के साए में बैठ जाऊं तो ये बैठना कहीं सूद ना बन जाए। ये तकवा है, ये कोई फतवे में बातें नहीं आती। लोग कहेंगे टू मच, पता नहीं कोई और ही लफ्ज़ ना बोल दे, लेकिन ये तकवा है। सरमायाकारी किए बगैर आप अपनी रकम से जो भी मुनाफा हासिल करेंगे वो हराम हो जाएगा। मैं आपको कहती हूँ मुझे 1 लाख रुपया दे दे, मैं आपको बदले में हर महीने 1,000 दे देती हूँ और बाद में आपको 1 लाख भी दे दूंगी, ये हराम है। सीधी सी बात है, कुल्लु कर्दिन या तजर्र नफा हो। और इस पे अभी चंद माह पहले एक बुक पढ़ा के आई हूँ अटलांटा में, कर्ज के मसाइल। मेरा ख्याल है कि हर घर में मर्दों के साथ बैठ के पढ़ने वाली किताब है। जब मैंने पढ़ी थी तो मेरा दिल करे कोई इस पे स्पॉन्सर करे इसको और इसकी सीरीज बनाकर पूरे कारोबारी तबके में मुफ्त बंटवा दूँ। ये इतनी कीमती चीज़ है, क्योंकि बाज़ दफ़ा किताब सुनकर समझ नहीं आती, पढ़कर समझ नहीं आती, सुन के समझ आती है। हमने कुछ और सोच के वो बुक शुरू की थी, जब पढ़ा तो उसमें से अंदर से वो खजाने निकले, कैसे लगा कि पता नहीं कैसे बचेंगे लोग, सोचने की बात है। मैं तो मालूम हुआ कि हमारी असल ज़रूरत सरमायाकारी है, यानी इन्वेस्टमेंट। सरमायाकारी किए बगैर आप अपनी रकम से जो भी मुनाफा हासिल करेंगे वो हराम हो जाएगा। और इसके मुकाबले में कर्ज़े हसना की बहुत तारीफ की गई, यानी दूसरे को इस नीयत से कर्ज देना कि वो कारोबार करे, इसमें सदके से दोहरा अजर है। किसी को आपने 100 रुपये कर्ज दिया, इस पर 200 रुपये सदका देने के बराबर अजर है। तो यहां ऐसे लोगों की मदद करें, अपना फालतू माल कर्ज हसना में दे दें। आपके खानदानों में बहुत सारे गरीब भाई बहन होंगे, आप उन्हें कहें जाओ भाई तुम कारोबार करो और जब तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे ना तो मेरा ये कर्ज वापस कर देना। इसी तरह दीन के कामों में बेशुमार प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ हम मुसलमान अपनी जमा शुदा दौलत, मैं नहीं कहती सब दे दें दीन वालों को, आपका भी हक है, सिर्फ उसको कर्ज के तौर पे आप दे देना कि आप रखें, जब हमें जरूरत होगी ले लेंगे। इतने अधूरे मंसूबे पूरे हो जाए, वल्लाही मैं आपको सच कह रही हूँ। छोटी सी कोशिश होती है, चंद लोगों की कोशिश मिलती है, वो अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देते हैं। हमारे अपने स्कूल के कितने प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोगों का कर्ज इस नहीं लगा हुआ है, और अगर आप उसमें से हर महीने स्कूल को कोई फायदा होता है तो वो क्या वो कर्ज देने वालों को नहीं फायदा हो रहा? ये तो खामोश किस्म की तिजारत होती है। और घर में रखी चीजें छुपी बैंकों में पड़ी पे 100 खतरे हैं, चोरों का खतरा, टैक्स के खतरे, उसका खतरा, उधर ले जाओ उधर ले जाओ, लेकिन तसली ये कि अपने पास है। आप किसी को दे दें तो कम से कम आपको ये सिक्योर तो हो जाता है ना, चलो मेरे हाथ से गया, राइट? आमतौर पे भी दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, खतरा सिर्फ यही होता है ना कि कोई वापस नहीं करेगा, तो चोरी भी तो हो ही जाती है ना, चीज़ नहीं आपका कोई रिश्तेदार लेके वापस कर सका, तो आप समझे चोर आता तो वो भी तो ले ही जाता ना। तो बहरहाल ये चंद बातें माली मामलात में थी। आप में से कोई सवाल, किसी के जहन में कोई बात, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा स्ट्रांग है, पूछना चाहें तो पूछ लें और शेयर करना चाहें तो शेयर करें। वाजे हर बात, कोई बात हद से बड़ी भी तो नहीं कही गई, आपको शिद्दत तो नहीं लगी? देखिए इसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और आप उसके बाद फिर, जैसे पहले भी आपका एक इशू था ना, आपने गाइडलाइन ली थी, आप पूरी बात लिख दें और लिखी हुई बात को इंशाल्लाह ताला आपके साथ करेंगे। और मैं आपको सच बताऊं, आपको ऐसे ऐसे मुफ्ती मिल जाएंगे जो आपको डंके की चोट पे कहते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ। आज इतने बड़े फितने मीडिया पे आए हुए लोग कह रहे हैं, कहते हैं वो आज का इंटरेस्ट है ही नहीं है, ये इंटरेस्ट ये तो तिजारत की एक किस्म है। तो वो कुरान में क्या लिखा है, वो भी तो यही कहते थे ना कि सूद तिजारत ही की तो एक किस्म है, तो अल्लाह तो कहता है ऐसा नहीं है। जी जी परवीन भाजी, देखिए मुझे एक हदीस पे ईमान है मेरा कि अल्लाह ने हर बीमारी की दवा बनाई है, हर मसले का है। आपको होता है कि आपके अपने प्यारों में कई ऐसे लोग हैं जो डूब रहे हैं उनके काम कारोबार, आपके मेरे घर में पैसे जमा पड़े हैं और किसी की रोटी नहीं पक रही या किसी की दुकान नहीं चल रही या उसका कारोबार बंद हो रहा है, तो इतना खूबसूरत मुस्लिम माशरा होना चाहिए। ये हमारे मामलात पे डिबेस करती है चीज़ कि आप उन चीज़ों से उनको बचाएं, लेकिन फिर वो ट्रस्ट वाली सोसाइटी होगी ना। लोग कहते हैं कर्ज दे दो तो अगला तो बंदा बाद में फोन ही नहीं उठाता, ये भी तो गलत। वो कर्ज की बुक जरूर आप सब सुने, और यकीन करें जो माली परेशानियों से इस वक्त गुजर रहे हैं उनको उसमें बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। रमजान गुजरने दें, हम एक और बुक इधर ही पढ़ेंगे आपके साथ, अल्लाह ने चाहा, रिस्क की कुंजी है। मैंने पहले अमेरिका में पढ़ाई भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज ये जो हम कहते हैं रिस्क नहीं, कमी है, बहुत है, तो आप देखें कि अल्लाह ने रिस्क की चाबियां क्या रखी हुई है ना। तो इंशाल्लाह इस बुक को पढ़ेंगे।
दिन में ये आ रहा था कि बैंकिंग के हवाले से कि पूरी आपकी कमाई तो सब अल्हम्दुलिल्लाह हलाल के तरीके से आती है, लेकिन तनख्वाहें फिर वही बैंक में जाती हैं और उसका आगे पीछे।
देखिए जिस चीज में आपका इख्तियार नहीं है ना उस पे अल्लाह बचा लेगा आपको। बैंक में सूद चल रहा है, या आप जिस जहाज में बैठ के आते हैं वो सूद पे है, या आप जिन बसों में सारा दिन इधर से उधर सफर करते हैं वो सूद पे है, वो आपकी मेरी नहीं है ना। एक सिंपल सा रूल समझ ले कि जिस चीज को आपने पे कर दिया ना आपकी जान छुट जाती है। मसलन मेरे जिंदगी में ऐसे दसियों वाकयात तो जरूर होंगे कि हम कहीं गए और दूसरे शहर गए और बाद में बात जाकर खुद मर्दों में बात खुल जाती है। मैं तो कभी पूछती भी नहीं ना बताती हूँ, लेकिन सार को पता लग जाता है कि इनका लीकर स्टोर है या इनका कन्वीनियंस स्टोर है। अब जाएं तो जाएं, आएं तो आएं, क्या करें तो किधर करें, बाहर से लेने खाने की आदत नहीं। आखिर यहां तक हुआ कि इनको खाने का पे करो और उनको बताओ कि ये मैं आपसे खाना ले रहा हूं, फिर खाएंगे और वरना नहीं खाना। अब ये बहुत इमोशनल चीज़ें होती हैं कि आप किसी के घर जाएं और आप खा ही नहीं रहे, वजह क्या कि ये वजह, तो उस वजह से बचने का एक हल है। तो जब कोई चीज़ आप खरीद लेते हैं, अब आप स्टोर्स में जाते हैं, कीवी पे जाते हैं, तो आप जो रैक्स में से चीज़ें खरीदते हैं आप पैसों की लेके आते हैं ना। अब वो पीछे से वो टीना कंपनी से दूध और दही की बोतलें किस कीमत पर ला रहे हैं, उधार ला रहे हैं, मेरा आपका उसमें इशू नहीं है। लेकिन इसको एक वाइड स्प्रेड रेंज में देखें तो हम मुस्लिम्स को ऐसी चीज़ों को आम करना है ताकि दूसरे भी बचें, पहले खुद आप बचें। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप बच जाते फिर आप ऐसे निज़ाम बना, यही तो है कामत दी, यही तो है कि आप इसको लेकर चले। लेकिन तकलीफ की बात क्या है कि गैर मुल्कों में रहने वाले तो ये कहते ही है ना कि हमें करना पड़ता है। शऊर की कमी की वजह से अब अपने मुल्कों में बैंकिंग इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन देने लग गई है कि मैं हैरान हो गई। मैं अभी पाकिस्तान में थी तो किसी ने घर की बात की तो उसमें उन्होंने लोन की बात की, जैसे यहाँ लोग लेते देते हैं, तो मैंने उन्हें कहा पाकिस्तान में भी लोग किस्तों पे या जैसे लोन पे, तो कहती बहुत बहुत अरसे से। मैंने कहा मैं तो बड़े मान से कहती हूँ पाकिस्तान में सबके अपने घर हैं और लोगों के अपने घर होते हैं। कहती यहाँ भी ये चीज शुरू हो गई, भी जो जॉब वाले लोग हैं, जो लिमिटेड कमाई वाले लोग हैं, वो फिर किस्तों पे घर लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होता है। जी सब कुछ सूद में आता है, हर वो चीज। देखिए एक सिंपल सी बात रखे कि जिसमें वक्त के साथ चीज बढ़ती जाए, आप पे ना कर सके तो आपके पैसे बढ़ते जाएं, ये सूद में आता है। बस आप सिंपल एक मिसाल करें, हमने सूद के मौजू में भी ये की थी, लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि आप कहते हैं कि यहाँ 3 मिलियन का घर आप ले रहे हैं, आप कोई घर सौदा करते हैं, जाते हैं मार्केट में, फिन पे देखते हैं, 3 मिलियन का दिखा रहा है ना वो आपको, आप कहते हैं चलें ये सूट करता है, इसको ओके करते हैं। जब आप उसको किस्तों पर ले आते हैं 20 साल में, आप आज डाउन पेमेंट 50,000 करोड़ दे देते हैं, पीछे आपके ऊपर रह गए समझिए कि 2.5 मिलियन रह गया ना। अब वो 2.5 मिलियन आपको कहते हैं आप 20 साल में दे दें, हर महीने 10,000 किस्तें, ऐसे ही है ना, मिसाल दे देती हूँ। आप बाद में जाके जमा करें सारी कीमतों को, 50,000 आपने आज दिया, आज से लेकर आपको 20 साल तक हर महीने 10,000 देने हैं, आप वो सारे आज ही कैलकुलेटर पे जमा कर लें। आपने 3 मिलियन का घर तकरीबन 4 से 4.5 मिलियन में लिया, ये ऊपर का 1.5 मिलियन क्या है, ये सूद है। उसने आपको पेमेंट प्लान दिया, आज आप हाथ में कैश पकड़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसा वक्त फिर लेके आए, एक दफा नहीं अब 2 दफा इसी मुल्क में ये बात हो गई है ना, ये छत जिसके नीचे आप लोग बैठे इस वक्त सीख रहे हैं, और अल्लाह ने अब जो घर दिया आपको, जिनको भी पता ही है ना, बैंक को हाथ में पैसा पकड़ा कर कागज लिए ना, ऐसे ही किया ना आप लोगों ने, लिया मैंने तो आपसे सुनी है ना बातें, उनको हमसे एक पैनी का इंटरेस्ट नहीं मिला। अब हमने वो पैसे कर्ज में लिए हैं लोगों से, अपनों से लिए हैं, उनको वापस करने ये हमारे सर की बात है, लेकिन हमने किसी से सूद पे बात ली नहीं है। लेकिन अब आप कहते हैं ये बिल्डिंग आज से कितने साल पहले आपने 6 मिलियन की ली थी, अगर इसकी हम किस्तें दे रहे होते तो आपको पता है कि ये 6 वाली जो थी ये हमें 12 की पड़ जानी थी 20 साल में। मैं खुद सोचती थी वो आपके इतने सगे क्यों हैं कि आपको इतने बड़े बड़े कर्जे दे देते हैं, वो उनका बिजनेस है, ठीक है। तो लिहाजा जिस चीज में आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ती है, आपने एक मशीन खरीदी वो 10,000 करोन की है, लेकिन किस्तों में आप कहते हैं ये, वो कहते हैं 2 साल में दे दें, वो आपको 15 की पड़ चुकी होती है। तो वो जो ऊपर के 15 वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक छोटी सी वीडियो है।
Thanks for agreeing to our home loan. We only charge 5% interest, the best you can find out there. All you have to do is just sign right here and we will take care of you.
वो कह रहे हैं हमसे घर लें, हम आपको बहुत थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।
Is it really worth it?
कहते क्या वाकई ये वर्थ करता? कह रहे क्या तुम्हें यकीन है कि ये सौदा तुम्हें फायदा देगा? तुम सोचो।
Because you trust the bank's promise that your wealth and property will increase through interest-based loans. Are you unaware that Allah explicitly promises in the Quran that He will destroy all money earned for interest, while He increases in multitudes the wealth that is spent in charity? Do you trust the bank more than Allah? The bank that is infamous for its deception more than Allah? Allah, the one who owns the treasures of the heavens and the earth, the one who never breaks his promise? Truly, if you trusted Allah with your wealth, you would spend it in charity and not destroy it for riba. Is it really worth it? Maybe you are seeking security through this interest transaction. Maybe you want to secure the comfort and safety of your children for buying a house or a car on riba. Would you still feel secure knowing that Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger declare war on those who deal with interest? What armor could you possibly defend yourself with? Surely the only security you have is to give up the interest today and save yourself from this calamity. Is it really worth it? Are you afraid to avoid interest because you fear poverty and hardship? Do you think Allah will neglect you like this? Allah loves those who sacrifice for Him and never lets them down. In fact, not only will Allah look after you, but He will repay every sacrifice you make with something better. As Allah says in the Quran, whosoever fears Allah, He will provide him a way out and provide for him from where he expects not. Is it really worth it? You would gladly refrain from consuming alcohol and pork because it's haram, but you would happily consume a lifetime of interest-based wealth, which is far more poisonous and harmful than both of these. Are you not aware that one of the biggest reasons for having your supplications and prayers unanswered by Allah is because of the haram you consume? Do you really want to risk Allah ignoring you for this? Is it really worth it? Maybe you are unaware of the gravity of the sin. You don't see it as harmful as committing adultery or fornication. Did you not know that the Prophet ﷺ said that the sin of riba is worse than 36 counts of adultery? Don't be fooled by the outer harmless appearance of this sin, for in fact riba is one of the 7 most destructive sins. Never underestimate the gravity of this sin. Is it really worth it? Maybe you are too attached to the luxuries you obtain through riba. Maybe the house you dream of and the car you wish to drive are too appealing to you. My brother, what happiness and enjoyment is there in anything other than obtaining Allah's pleasure? How could you possibly compare a temporary moment of luxury to the eternal and endless pleasure of Allah? My brother, my sister, don't be deluded by Shaitan and his false promises. Interest will only lead to a lifetime of misery, despite the temporary enjoyments it may bring. Give up what remains of interest in your life and return to Allah. And if you are thinking of going ahead with it, turn around now. Allah will always accept you.
समझ आया आप लोगों को? यानी बेसिकली वो घर खरीदने आया है, तो जो वहाँ एजेंट था वो उसको कह रहा है कि आप आएँ और हम आपको बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वो उसको पेपर देता है, वो साइन कर रहा है, लेकिन उस वक्त उस बंदे के जहन में ये सारी बातें आई हैं कि क्या वाकई ये वर्थ इट है और क्या मैं इसमें जा रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा। और फिर वो सारी हदीसें जो सूद के बारे में, कि सूद का एक दिरहम माँ से 36 बार जिना करने के बराबर है। तो ये करके आखिर में इसमें उसने कहा है कि मैं अब नहीं ले रहा, एंड पे हुआ ना, हाँ तो एंड पे फिर उसने कहा कि सॉरी मैं ये घर नहीं ले सकता ना, तो ये सोच उसको वक्त पे आ गई तो वो बच गया ना, तो बाद में आती तो मुश्किल होता। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सब के लिए इसको आसान करे।